नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। तमिलनाडु के करूर में राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। 50 से अधिक लोग राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए पूर्व न्यायमूर्ति अरुणा जदीशन के नेतृत्व में 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। करूर के सभी अस्पताल भगदड़ में प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं। अभिनेता विजय ने भगदड़ की घटना पर गहरा सदमा व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि वे असहनीय पीड़ा और दुख में हैं। वहीं अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि यह घटना दिल को झकझोर देने वाली है। राज्य के विपक्षी नेता ई पलानीसामी घटना की जानकारी लेने के लिए करूर पहुंच चुके हैं। ये घटना तमिलगा बैटरी कड़गम के संस्थापक और अभिनेता विजय के रोड शो के दौरान हुई। रोड शो शाम लगभग 3 बजे से शुरू हुआ। इसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से करूर भगदड़ की घटना की वजह और इसके बाद किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों का विवरण देने को कहा है। अधिकारियों ने प्रबंधन में हुई खामियों की जांच शुरू कर दी है, जिसके कारण ये जानलेवा घटना हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस घटना ने अत्यंत पीड़ा पहुंचाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कहा कि भारत का एक पड़ोसी देश है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अपने संबोधन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दशकों से कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हमलों के पीछे भी उसी एक देश का हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में उस देश के नागरिक भी शामिल हैं। उन्होंने इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्राजील और भारत के स्थायी सीट के आवेदन का समर्थन करता है। इसके साथ ही रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एकमात्र स्थायी सदस्य बन गया है जिसने स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। इससे पहले मॉरिशस और भूटान ने भी भारत की लंबे समय से चली आ रही दावेदारी का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के एक बड़े प्रयास के तहत समूचे भारत में 97,500 से अधिक नए 4G मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया है। इनमें 92,600 टावर पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस हैं। BSNL द्वारा लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इन टावरों से और 30,000 गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचने की उम्मीद है।
टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो, हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है।
एशिया कप 2020 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 17 संस्करण और 41 वर्ष के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।